Priya Bhai, O Bheno, Namo Buddhai, Jai Bheem. So we've been approaching the Buddha more and more closely.
तो हम बुद्ध के ओर रुख कर रहे थे अधिक से अधिक करीब जाकर.
And yesterday, while I was speaking about faith, I could see that for many of you, this was a very powerful experience.
और कल मैं श्रद्धा के बारे में कह रहा था और मैं आपके चेहरों पे देख पा रहा था कि आप पूरे उस अनुभव से भरे हुए थे.
Just looking at your faces, I could see faith shining in your faces.
आपके चेहरों को देखकर ही मैं समझ पा रहा था कि आपके चेहरे चमक रहे थे.
Because when one talks about these things, they come into one's heart.
क्योंकि जब कोई इन बातों के बारे में बात करता है तो वह चीजें हृदय में आती है.
And I hope that you did really see all three aspects of faith alive in you.
और मैं इसकी आशा करता हूँ कि यह श्रद्धा के जो तीनों आयाम है इसको आपने गहराई से स्पष्टता से देखा होगा.
I myself found it very interesting doing the reflection this morning on karma.
आज के सुबह जब मैं कर्मों के ऊपर चिंतन कर रहा था तो यह मेरे लिए काफी रोचक था.
I realized I have got great faith in karma.
और मैंने यह इसका साक्षात्कार किया कि कर्मों के ऊपर मेरी गाढ़ी श्रद्धा है.
But I can have more.
लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अधिक मेरी श्रद्धा हो सकती है.
If I really had complete faith in karma, well, I'd be at the feet of the Buddha.
अगर कर्मों के ऊपर मेरी पूर्ण श्रद्धा रही तो मैं बुद्ध के चरणों में रहूंगा.
So I hope that you both saw faith alive in yourselves and saw how you can develop it further.
तो आप सब लोगों ने यह देखा होगा कि आपके हृदय में जो श्रद्धा है वह जीवित है और कैसे आप इसे अधिक वृद्धिंगत कर सकते हैं.
And of course, it's especially alive for us here at Bodh Gaya.
और बोध गया में होने के कारण यह विशेष रूप से जिंदा होती है.
And I think everybody will have experienced an increase in their faith.
और हर किसी को यह अनुभव होगा कि हम श्रद्धा को अधिक वृद्धिंगत कर रहे हैं.
An increase in that desire for the Buddha, Dhamma and Sangha.
ऐसी इच्छा या अभिलाषा बुद्ध के चरणों में जाने की.
Usually our desires are connected with self.
अक्सर हमारी जो इच्छाएं होती है वह स्व से जुड़ी होती है.
That's what Trishna usually means.
यही तृष्णा का अर्थ होता है.
It's Kama Trishna, Bhavana Trishna, Vibhava Trishna.
यह काम तृष्णा होती है, भाव तृष्णा होती है, विभाव तृष्णा होती है.
It's all to do with I.
यह इसका जो संबंध है यह स्व से है.
But here you experience another kind of Trishna.
लेकिन यहाँ हम अलग तरीके की तृष्णा का अनुभव करते हैं.
In the Pali canon, it sometimes talks of Trishna in this way.
पाली सूत्रों में इस प्रकार से तृष्णा की बात की गई है.
Trishna for the Buddha.
बुद्ध के लिए तृष्णा.
Not ego Trishna, but Trishna for the Buddha.
अहम के लिए तृष्णा नहीं लेकिन बुद्ध के लिए तृष्णा.
So that all that desire, instead of going into yourself, goes up to the Buddha.
तो आपकी यह प्रबल इच्छा बुद्ध के प्रति जाने के लिए.
We're familiar with the distinction between Kama Chanda and Dhamma Chanda.
तो हम इसमें फर्क करते हैं जो काम छंद है और धम्म छंद है उसमें.
Chanda means Krishna.
छंद का अर्थ होता है तृष्णा.
So there can be Chanda for Kama, for sensuous experience, for self.
तो काम के लिए छंद होता है, इंद्रिय जन्य सुखों के लिए जो स्व के लिए होता है.
And there can be छंद for the Dhamma.
और धम्म के लिए छंद हो सकता है.
Almost you could say छंद that is the Dhamma.
ऐसा हम कह सकते हैं कि जो छंद है वही धम्म बन जाता है.
The Dhamma sort of expressing itself through you.
तो धम्म जो है मानो आपके द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है.
That of course is what we see under the heading of Dhamma Niyama.
तो यह हम देखते हैं धम्म नियम शीर्षक के तहत.
So being at Bodh Gaya strongly reinforces our desire for the Buddha, Dhamma and Sangha.
तो
Being at Bodh Gaya strongly reinforces our desire for the Buddha, Dhamma and Sangha.
Bodh Gaya mein hone ke karan hamari jo yah chhand hai ya yah jo ichha hai yah prabal ho jati hai Buddha Dhamma aur Sangha ke prati.
And in fact the Buddha himself foresaw this.
और बुद्ध ने स्वयं इसे देखा.
He foresaw that being at Bodh Gaya would greatly increase people's desire for the Buddha Dhamma and Sangha.
बुद्ध ने देखा कि यहाँ आकर लोगों की जो भावनाएं हैं यह बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उच्च हो जाएगी.
He said just as he was dying that there are four places that increase emotional urgency.
बिल्कुल उनके परिनिर्वाण के पहले बुद्ध ने यह बताया कि जो अर्जेंसी भावनिक जो त्वरितता है उस त्वरितता को दर्शाती है यह चार चीजें या यह चार स्थान.
Those four are of course Bodh Gaya, well Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath and Kushinagara.
यह है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर.
So he said that being in those places increases the Pali word is samvejana.
तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि इन चार स्थलों में जाकर संवेदनाएं बढ़ती हैं.
संवेजना. And that is usually translated into English as a strong sense of urgency.
और यह शब्द इसका द्योतक है कि हमारी जो भावनिक त्वरितता है यह दर्शाती है.
A feeling that you must get on with practicing the Dhamma.
यह आपको यह बताती है कि आपने बिल्कुल ही यानी यह करना ही चाहिए धम्म का आचरण.
And the Buddha strongly encouraged people to make pilgrimage to those four places.
और बुद्ध ने प्रबलता से बताया कि इन चार स्थलों की यात्राएं करनी चाहिए.
This is what he said just a few hours before he died.
बिल्कुल उनके परिनिर्वाण के कुछ घंटों पहले ही उन्होंने यह कहा.
This being at Bodh Gaya makes you strongly feel I can do it, I must do it.
बोध गया में होने के कारण हमें यह महसूस होता है कि मैं यह कर सकता हूँ, मैंने यह करना ही चाहिए.
And he said that all of my disciples of any kind, male, female, monk, lay, they should visit these places.
तो वो कहते हैं कि मेरे सभी अनुयायी जो है भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिकाएं यहाँ पे उन्होंने भेंट देनी चाहिए.
He spoke about his disciples who are full of faith, full of Shraddha.
वह उन अपने अनुयायी के बारे में अनुयायियों के बारे में कह रहे हैं जो श्रद्धा से भरे हैं.
Or his disciples who had a faithful heart, it's translated in English, pasanna chitta.
तो पाली में इसे यह कहा जाता है प्रसन्न चित्त.
प्रसन्न
चित्त जो श्रद्धा से भरा है.
That's prasanna, of course, in Sanskrit, as in prasanna bodhi.
तो वह संस्कृत में प्रसन्न होता है जैसे प्रसन्न बोधि है.
Prasanna is the Pali.
प्रसन्न जो है यह पाली है.
So prasanna chitta is a heart filled with faith.
तो प्रसन्न चित्त वह होता है ऐसा दिल या हृदय जो श्रद्धा से भरा है.
That's that second kind of faith I talked about yesterday.
तो यह दूसरे प्रकार की श्रद्धा है जिसकी मैंने कल बात की.
That serene faith, that lucid faith.
यह तरल श्रद्धा.
Because the quality of prasanna is a great feeling of calmness and clarity.
यह ऐसी भावना होती है जहाँ पे गहरी स्पष्ट सुस्पष्टता और शांति होती है.
A strong feeling of purity.
शुद्धता की गहरी शुद्धता का गहरा भाव.
So the Buddha said anybody who makes a pilgrimage to Bodh Gaya with that kind of heart will increase their sense of urgency.
तो कोई भी यात्री अगर ऐसे स्थलों पर जाता है तो उनकी भावनिक त्वरितता जो है यह रुद्धिंगत होगी.
I think probably many of you will experience that.
आप में से कई लोग शायद इसका अनुभव लेते हो.
Somebody told me that when they were down there, they felt at one point just 15 minutes and I'm enlightened.
तो कुछ लोगों ने जब वो बोधगया मंदिर के
yeah, yeah, the mandir, yeah. It was at the mandir.
के पास थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि और अगर 15 मिनट मैं वहाँ बैठ जाता तो शायद संबोधि प्राप्त कर लेता.
That's what you can feel, isn't it? So close.
इस प्रकार की भावना है या भाव आता है आप बिल्कुल करीब है ऐसा महसूस करते हैं.
And you feel a strong increase in going for refuge.
और शरण गमन की जो मात्रा है वह काफी गहरी होती है.
Because this experience of samvedana is very closely connected with the act of going for refuge to the three jewels.
क्योंकि संवेदना यह जो भाव है यह शब्द का भाव ही बताता है आप काफी सक्रिय होकर शरण गमन करते हैं.
I can do it, I must do it.
मैं इसे कर सकता हूँ मैंने इसे करना ही चाहिए.
And the Buddha even said that if anybody comes on pilgrimage to Bodh Gaya and dies on the way or dies here, it's a very, very skillful thing indeed.
बुद्ध ऐसा कहते हैं कि इन चार स्थलों की यात्रा करते हुए राह पर या इन चार स्थलों पर अगर उसकी मृत्यु होती है तो यह बहुत ही कुशल बात है.
You'll die in a really positive state.
क्योंकि आप काफी विधायक मानसिक अवस्था में दुनिया को छोड़ेंगे.
Because Bodh Gaya will be in your mind.
क्योंकि बोध गया आपके मन में होगा.
I think that's why Buddha Vajra is here.
शायद यही कारण है क्यों बुद्ध वज्र यहाँ आए.
But you can imagine if you died at Bodh Gaya, well, the Bodhi tree would be above you.
क्योंकि अगर आप यहाँ आपकी यानी मृत्यु होती है तो बोधि वृक्ष आपके ऊपर रहेगा.
And your last thoughts would be about the Buddha's enlightenment.
और आपका जो अंतिम विचार है यह बुद्ध के संबोधि के बारे में होगा.
And you know that your last thoughts are very, very weighty karma indeed.
और जो हमारे अंतिम विचार होते हैं यह काफी भारी कर्म होते हैं.
And that will definitely affect your next birth.
और यह निश्चित ही आपके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं.
And you can see that must be true.
और आप देख सकते हैं कि यह सत्य है.
If you come with that heart and you happen to die here, well, your last thoughts will be your thoughts of the Buddha.
तो अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ हमारी मृत्यु होती है तो हमारा दिल जो है यह अंतिम जो हमारा विचार होगा यह बुद्ध से भरा होगा.
So those of you going tonight, well, you better be quick.
तो अगर आपको
the thought of Bodh Gaya, the presence in Bodh Gaya has a strong effect on your faith.
तो बोध गया में आपकी जो उपस्थिति है उसका आपके श्रद्धा के ऊपर काफी प्रबल प्रभाव होता है.
And you've all felt that. We've all felt that.
हम सब लोगों ने इसे महसूस किया.
That's why I'm coming back here every year.
इसलिए मैं हर साल यहाँ आता हूँ.
I feel so much more inspired when I go back.
क्योंकि जब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो मुझे काफी प्रेरित हुआ है ऐसे लगता है.
I was thinking of Pramodana.
मैं प्रमोदना के बारे में बात कर रहा था.
धर्मचारी प्रमोदना.
धर्मचारी प्रमोदन जो है वो.
But I think two or three years ago he started coming to Bodh Gaya very regularly.
दो तीन साल पहले वो यहाँ नियमित रूप से आते थे.
And it completely changed his life round.
और उनका जो जीवन है यह पूरी तरह परिवर्तित हुआ बदल गया.
He hadn't had an entirely easy time in the order.
संघ में उनका बहुत यानी कठिन समय रहा.
And he had several problems.
काफी समस्याएं उनको थी.
But he came to Bodh Gaya and he felt it all just fell away.
और जब वे बोध गया आए तो उनकी सारी समस्याएं दूर हुई ऐसा उन्हें महसूस हुआ.
And he's a completely changed man.
और वे पूरी तरह परिवर्तित व्यक्ति थे.
And well, you know that he died just last year.
और आखिरी साल यानी गत वर्ष उनका निधन हुआ.
And I saw somebody who's with him when he died.
और मैंने किसी को देखा मैं जिसको मिला जो उनके पास मृत्यु के वक्त थे.
He wasn't physically at Bodh Gaya, but he was mentally at Bodh Gaya.
वे शारीरिक रूप से बोध गया में नहीं थे लेकिन मानसिक रूप से वे बोध गया में थे.
And he died really well.
और बहुत अच्छी उनकी मृत्यु हुई.
So yes, Bodh Gaya is a very, very important place for us.
तो हमारे लिए बोध गया काफी महत्वपूर्ण स्थल है.
And we've all got much more samvedana, I hope.
और मैं आशा करता हूँ कि हम सबको यह प्रबल संवेदना मिली होगी.
A great increase in our sense of urgency to practice the Dhamma.
ऐसी यानी भावनिक त्वरितता धम्म को आचरण करने की या साक्षात्कार करने की.
But we have to go.
लेकिन हमें जाना होता है, चलना होता है.
Or we choose to go.
या हमें कम से कम इसका चुनाव करना होता है कि हमें चलना है.
We'll all go, and Buddha Vajra will be the only order member here.
तो हम सब लोग जाएंगे, लेकिन बुद्ध वज्र एक ही धर्मचारी यहाँ बचे होंगे.
And yes, we'll all go back where we've come from.
तो हम वहाँ लौट जाएंगे जहाँ से हम आए हैं.
And what's going to happen then? He's a bit worried what I'm going to do next.
और फिर क्या होगा?
What are we going to do when we're not at Bodh Gaya?
तो हम क्या करने वाले हैं जब हम बोध गया में नहीं होंगे?
How are we going to keep this samvejana alive?
कैसे हम इस संवेदना को जिंदा रखेंगे?
Because it easily goes.
क्योंकि यह बहुत आसानी से चली जाएगी.
It may not even last to Gaya station. Yes, even there.
यह जो भाव है यह गया स्टेशन तक भी नहीं रुकता है, चला जाएगा.
It may not last till you get back where you're going.
और वहां तक नहीं रह सकता जहां हम वापस जा रहे हैं.
India will close around you.
क्योंकि सारा भारत आपसे घिरा हुआ है.
Your family will close around you.
आपका परिवार आपसे घिरा हुआ है.
So many things are there.
काफी सारी चीजें हैं.
And it's easy to lose that sense of urgency.
तो यह जो भावनिक त्वरितता जो है इसे खो देना बहुत आसान है.
But it's really important that we keep it alive.
लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम इसे जिंदा रखें.
So how to do that?
कैसे हम इसे करें?
In a way you all know, I don't need to say anything.
एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है.
But what I will say is that it's really important to keep in touch with the Buddha.
लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग बुद्ध के साथ हमारा जो संपर्क है उसे जिंदा रखना चाहिए.
While we're here, the Buddha, even though he's absent, he's very present.
जब यहाँ हम यहाँ है, भले ही बुद्ध यहाँ नहीं है, अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी वो यहाँ मौजूद है.
We don't have to make much effort. We just go to the Bodhi tree and we can think of the Buddha.
हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है. हम बोधि वृक्ष में जाते हैं और वहाँ बुद्ध होते हैं.
But when we go back home, we have to do that for ourselves.
लेकिन जब हम घर लौट के जाते हैं तो हमें स्वयं यह करना होता है.
We have to make the effort to stay in touch with the Buddha ourselves.
हमें प्रयास करने होते हैं बुद्ध को अपने संपर्क में रखने के लिए.
And being here would have helped you, of course.
और यहाँ होना आपको मददशील होता है.
You've got some definite feeling from this place.
इस जगह से आपको निश्चित ऐसी कोई भावनाएं आती है, भाव आता है.
So you need to connect that with your practice.
तो इसको आपके आचरण के साथ रखना आवश्यक है.
Everybody here, an order member, has a personal practice.
हर धर्म संघ सदस्य जो यहाँ है उसकी अपनी निजी साधना है.
And that personal practice centers on two things.
और जो निजी साधना है यह दो बातों के ऊपर निर्भर होती है.
It centers on dhammic death and dhammic rebirth.
यह दो बातें जो है वह धार्मिक मृत्यु और धार्मिक पुनर्जन्म.
And that practice is your way of keeping in contact with the experience of Bodh Gaya.
और वह जो साधना है वो है आपको बुद्ध गया से संपर्क में रखती है.
Whatever practice you're doing, it's your way of keeping in contact with the Buddha and the Bodhi tree.
जो कुछ भी आप साधना करते हैं वह तरीका है बुद्ध के साथ या बोधि वृक्ष के साथ संपर्क रखने का.
It's very obvious for you for those of you who meditate on the Buddha Shakyamuni.
कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही सहज है जो बुद्ध साक्य मुनि की साधना करते हैं.
You can just imagine you're under the Bodhi tree.
आप केवल कल्पना कर सकते हैं आप बोधि वृक्ष के तले.
And that you're seeing the Buddha there.
और वहाँ आपको बुद्ध मिलते हैं.
And in most forms of practice that people do, they actually see the Bodhi tree.
और जो लोग साधना करते हैं वो वाकई में बोधि वृक्ष को देखते हैं.
But you've got some definite feeling now from these few days, and you can bring that into your daily practice.
तो आपको कुछ ठोस अनुभव ऐसे मिलते हैं और आपका आपकी रोज की जो साधना है उस साधना में आप इसे ला सकते हैं.
I find that when I come to Bodh Gaya, there are sort of very special points in my visit.
तो जब मैं बोध गया में होता हूँ तो मेरे कुछ विशिष्ट बिंदु होते हैं मेरे भेंट में.
A lot of the time I'm just walking around, I'm not really quite connecting with the Buddha.
बहुत बार मैं चलते रहता हूँ लेकिन बुद्ध से मेरा संपर्क नहीं होता.
But every now and again the fog clears.
लेकिन हमेशा ही यह जो धुंधली धुंधला सा जो है यह जो ओस है यह ओझल हो जाती है.
And I see the Buddha.
और मैं बुद्ध को देखता हूँ.
Very special moments.
और वो काफी विशेष क्षण होते हैं.
Just last night while we were sitting, I was looking at the tree.
कल मैं जब वहाँ बैठा था मैं वृक्ष को देख रहा था.
And it was very quiet.
और वो बहुत यानी कल काफी वहाँ शांतता थी.
Very very still.
काफी स्थिर था.
And there was some rather beautiful Thai chanting going on inside the parikrama, right, quite soft.
और जो परिक्रमा जो थी अंदर के जगह में वहाँ बहुत ही सौम्य ऐसा पठन हो रहा था.
And you felt that the people who were chanting were quite deeply absorbed.
और हम महसूस कर पाते थे कि जो लोग वह पठन कर रहे वह गहराई से उसमें डूबे हुए थे.
And the fog cleared.
और जो उमस है जो धुंधलापन है वह स्पष्ट होता है.
My heart was connected to the Buddha.
मेरा जो दिल है हृदय है वह बुद्ध के साथ संपर्क में आया.
So I can think of quite a number of experiences during these days when I felt especially connected.
तो इन दिनों मुझे ऐसे कुछ विशेष अनुभव आए जहां मैं बुद्ध के साथ संपर्क महसूस किया.
And I can tell you exactly where I was and what was happening at each of those times.
और मैं बता सकता हूँ उस वक्त मैं कहाँ था और क्या हो रहा था.
And I use those sort of experiences in my practice.
और ऐसे अनुभवों को मैं मेरी साधनाओं में इस्तेमाल करता हूँ.
There's some favorite places where I sit when I'm here.
तो जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे कुछ मनपसंद जगह है जहाँ पे मैं बैठता हूँ.
I usually sit inside the parikrama as close as I can to the vajrasana.
तो परिक्रमा के भीतर वज्रासन के बिल्कुल समीप बैठने की मैं कोशिश करता हूँ.
So when I do my practice, I go to that place.
तो जब मैं मेरी साधना करता हूँ तो मैं उस जगह में जाता हूँ.
I feel I'm there.
मुझे ऐसे लगता है मैं वहाँ हूँ.
So then I'm very strongly connected to the Buddha.
ताकि मैं काफी प्रबलता से बुद्ध के संपर्क में रहता हूँ.
So you've had experiences during these days that were particularly strong.
तो इन दिनों हमारे पास ऐसे अनुभव होते हैं जो विशेष रूप से प्रबल होते हैं.
So bring that into your practice.
तो उन्हें आप अपनी साधना में लाइए.
Now of course many people here are not doing the contemplation of Shakyamuni.
और हम में से कई लोग शाक्यमुनि का चिंतन नहीं करते हैं.
People are doing Vajrasattva, Tara, Manjushri, Avalokiteshvara, etc.
तो कुछ लोग अन्य अन्य साधनाएं करते हैं. मंजूश्री है, तारा है, अवलोकितेश्वर है, वज्रसत्व है.
Many devotees of Padmasambhava.
पद्मसंभव की साधना करते हैं.
But doesn't matter.
लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता.
They're all the Buddha.
वे सभी बुद्ध है.
They're not really different from the Buddha.
वो बुद्ध से भिन्न या अलग नहीं है.
In a way, they're simply aspects of Bodhi.
वो केवल मात्र संबोधि के आयाम है.
The Bodhi that the Buddha realized here. But they're just aspects of that.
तो बुद्ध ने जिस संबोधि को यहाँ साक्षात्कार किया है उसके वे आयाम है.
In a way you could say that Manjushri is simply the wisdom aspect of the Buddha.
आप ऐसा कह सकते हैं मंजूश्री जो है यह बुद्ध के प्रज्ञा का आयाम है.
He's the Buddha in that form.
तो वह बुद्ध है उस रूप में.
So you're still connected to the Bodhi tree.
उस फिर भी हम बोधि वृक्ष के ही संपर्क में हैं.
No Bodhi tree, no Manjushri.
अगर बोधि वृक्ष नहीं है तो मंजूश्री नहीं है.
No Bodhi tree, no Vajrasattva.
अगर बोधि वृक्ष नहीं है तो वज्रसत्व नहीं है.
No Bodhi tree, no Padmasambhava.
अगर बोधि वृक्ष नहीं है तो पद्मसंभव भी नहीं है.
All these other figures are simply aspects of what Bodhi is.
तो यह सारी प्रतिमाएं जो है यह बोधि के आयाम है.
And I imagine that those of you who do other practices will have been connecting those practices with being at Bodh Gaya.
तो जो कुछ भी इन साधनाओं को करते हैं वह अपने साधना में इसका संपर्क ला सकते हैं.
And you can make that conscious, very conscious, if you like.
अगर आप चाहते हैं तो आप इसे काफी सचेत कर सकते हैं.
For instance, if you do the Tara practice, you can imagine your Tara worshipping the Buddha.
तो अगर आप तारा की साधना करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं तारा को बुद्ध के साथ संपर्क में लाने के लिए.
If you do the Vajrasattva practice, well, you can imagine that the Buddha is Vajrasattva purifying you.
तो अगर आप वज्रसत्व की साधना करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध आपको शुद्ध कर रहे हैं.
Whatever it is, it's all just the Buddha.
कुछ भी हो यह सभी बुद्ध ही है.
In a way, you could say that there can't be more than one Buddha.
ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता.
There can be many different enlightened bodies or bodies in which enlightenment has been attained.
तो ऐसे कई शरीर होंगे या ऐसे कई संबोधियां होगी जो शरीर में हासिल हुई है.
Good, well done. but really enlightenment is not, you can't have one enlightenment and another enlightenment.
तो आप एक संबोधि और फिर वो दूसरी संबोधि ऐसा नहीं हो सकता.
It's beyond number.
क्योंकि यह संख्याओं से परे है.
The unconditioned mind has no number.
असंस्कारित चित्त का चित्त की संख्या नहीं होती.
So yes, when you do any of these practices, you're doing the Shakyamuni practice.
तो आप जो भी साधना कर रहे हैं आप वह शाक्यमुनि साधना करते हैं.
But you're doing it in that form.
लेकिन आप उस प्रकार में या आयाम में आप करते हैं.
Drawing out that particular aspect of enlightenment.
संबोधि का वह विशेष आयाम आप चुराते हैं.
And well, if you find that helpful, you can connect in that way.
अगर आप इसे मददशील समझते हैं तो आप उस तरीके से इससे जुड़ सकते हैं.
I remember Bhante saying that he'd had a sort of vision.
मुझे अभी याद है कि भंते कहते हैं कि उन्हें ऐसी कुछ दृष्टि हासिल हुई.
And he wanted one of our artists to draw this. Or paint it rather.
और हमारे एक चित्रकार को उन्होंने कहा कि इसका आप चित्र निकालिए.
He had a vision of the Buddha sitting in enlightenment under the Bodhi tree.
उन्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि उन्होंने देखा कि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की.
And he was glowing with an aura.
और उनका जो वलय है उस वलय से वह चमक रहे थे या फैल रहे थे.
And he could see in that aura all the different bodhisattvas appearing and disappearing.
और उन्होंने देखा कि उस वलय में भिन्न भिन्न प्रकार के बोधिसत्व आ रहे हैं और जा रहे हैं.
Sort of merging and re-merging.
मान लीजिए वो मिल रहे हैं और
emerging and re-merging, yeah.
उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सम्मिलित हो रहे हैं.
Coming and going all the time.
आ रहे हैं और जा रहे हैं.
And he felt that well expressed the relationship between these Buddhas and Bodhisattvas of imagination and the historical Buddha.
और वे कहते हैं कि जो ऐतिहासिक बुद्ध थे उनके ही परिपक्ष में यह हुआ है.
And they may help you to approach more deeply certain aspects of the Buddha's enlightenment.
और वे आपको मदद कर सकते हैं बुद्ध के विशेष आयामों को अधिक गहरा करने के लिए.
Of course, if you approach any one aspect, you approach them all.
जब आप किसी एक दृष्टिकोण से जाते हैं तो अन्य दृष्टिकोण भी वहां होते हैं.
Those who do the Manjushri practice will know that the sadhana itself is full of the theme of compassion.
तो अगर आप मंजूश्री साधना करते हैं तो यह भी करुणा से भरी है.
Anybody who does the Avalokiteshvara practice will know that the Avalokiteshvara practice is full of the theme of wisdom.
अगर कोई अवलोकितेश्वर की साधना करता है तो वह करुणा प्रज्ञा से भरी है.
So it's the same for all the practices.
यही समान बात है सभी साधनाओं के लिए.
The house has many doors.
उस घर के काफी दरवाजे हैं.
But they all lead into the one great hall.
लेकिन वो एक ही यानी बड़े दरवाजे पर जाते हैं.
It doesn't matter which you enter through.
और इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस दरवाजे से प्रवेश करते हैं.
You enter through the door that you feel most like you want to enter through.
आप उस दरवाजे से जाते हैं जो दरवाजा आपको पसंद है.
Because if you want to go through it, you're more likely to do it.
क्योंकि अगर आप इसे कर रहे हैं तो यानी जो दरवाजा आपको पसंद है वहां से आप अधिक करेंगे.
But enlightenment is enlightenment is enlightenment.
So, संबोधि जो है वह संबोधि है और वह संबोधि ही है.
So you can do your practice connecting with Bodh Gaya.
तो आप अपनी साधना कर सकते हैं बुद्ध गया के साथ संपर्क बनाकर.
So that you regenerate those feelings that you have here.
तो आप उन भावनाओं को फिर से हासिल करते हैं या तैयार करते हैं.
It's a very important principle in Dhamma practice.
यह धम्म आचरण का महत्वपूर्ण तत्व है.
If you've had a very strong experience, you can recall part of the experience, and through that, the whole experience comes into your present.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक किसी हिस्से को आप उजागर करते हैं और वो पूरे हिस्से में यानी अभिव्यक्त होता है.
So for instance, before the Maitri Vikas practice, I was asking you to recall Anapanasati.
तो मैंने
Before doing the Maitri Vikas.
Maitri Vikas ध्यान के पहले मैंने आप सब लोगों को इसका अनुरोध किया था कि हम आनापानसति ध्यान करें.
And I think some of you will have found that just thinking about Anapanasati, you became concentrated.
और आप केवल आनापानसति को सोचकर ही आप एकाग्र होते थे.
So it may be that by thinking about Bodh Gaya, by thinking about a particular place, a particular moment, that helps you to recall that. That strong samvejana.
तो बोधगया को सोचकर यहाँ रहकर आपकी जो संवेदना है वह अधिक जागरूक होती है.
And I think that if you find this helpful, it's useful to come back to Bodhgaya every day.
अगर आपको अगर यह मददशील है तो यह बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप रोज बोधगया आते हैं.
And then we'd keep Buddhavajra company.
और आप फिर बुद्ध वज्र को साथ निभा सकते हैं.
We'd all come back and join him every day.
तो हम यहाँ आएंगे और हर रोज उसके साथ रहेंगे.
But yes, I think that will be very useful for some of you.
तो हम सब लोगों के लिए यह काफी मददशील होगा.
But there's an aspect of coming back here that I think is also very important.
लेकिन यह जो आयाम है यहाँ पे दोबारा आना यह महत्वपूर्ण है.
We spent quite a lot of time on the theme of Dhammic death.
हमने काफी समय बिताया है धार्मिक मृत्यु के ऊपर.
We've spent time, for instance, doing the practices connected with Dhammic death.
हमने काफी यानी समय बिता है धार्मिक मृत्यु के लिए.
We've done the five reflections. We've done the six element practice.
हमने पांच चिंतन किए, छह धातुओं का ध्यान किया.
But in the talks, I've also tried to strengthen the theme of Dhammic death.
लेकिन मैं जो बोल रहा था उसमें मैंने धार्मिक मृत्यु को अधिक मजबूत करने की कोशिश की.
I started by talking about the Buddha's absence.
मैंने शुरुआत में ही बुद्ध के अनुपस्थिति को उजागर किया या उसके बारे में बात की.
So it became clearer to us, I hope, what had to die in us.
तो इस बात को मैंने स्पष्ट किया कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें मृत्यु होनी चाहिए.
Because when we saw the Buddha disappear, we saw that he was disappearing from self.
तो हमने जब देखा जब बुद्ध अदृश्य होते हैं तो वे स्व से अदृश्य होते हैं.
And we heard that song of victory of the Buddhas.
और हमने बुद्ध के जीत का गीत गाया.
And that reminds us that there's no dhammic rebirth without dhammic death.
तो हमने यह देखा कि धार्मिक पुनर्जन्म नहीं है धार्मिक मृत्यु के बगैर.
What we think of as dhammic rebirth without dhammic death is just worship of a deva.
जो हम धार्मिक पुनर्जन्म को सोचते हैं धार्मिक मृत्यु के बगैर वो केवल देवों की पूजा होगी.
So we need to make sure that in our practice every day is a strong element of dhammic death.
तो हमने इस बात के ऊपर गहरा चिंतन करना चाहिए कि हमारे चिंतन में प्रबल आयाम होना चाहिए धार्मिक मृत्यु का.
And again, you can call on some of the experiences that you've had here.
और आप उन अनुभवों को वापस बुला सकते हैं जो आपको यहाँ आए.
You may, at some point, as I have done a few times down at the Mahabodhi Temple, at a certain point feel that you're leaving yourself behind.
कभी कभी आप ऐसा महसूस कीजिए जब आप महाबोधि विहार में जाते हैं आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं.
One seems to open up so fully to what is there that you're not there yourself.
तो आप उस बात के लिए अपने आप को खुला कीजिए जो वहां है जो आप स्वयं नहीं है.
This is very important to remember in your daily practice.
तो हमारे रोज के साधना में इसे याद करना जरूरी है.
And you can use the experiences you've had on this very strong retreat to help you.
तो इस प्रबल शिविर का आप उपयोग कर सकते हैं अपने मदद के लिए.
And I really hope you do find that is useful.
और मुझे आशा है कि यह आपको मददशील होगा.
Our daily sadhana is very important for us as order members.
एक धर्मचारी होने के नाते या संघ सदस्य होने के नाते हमारी साधना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है.
It's the way in which we really focus on what is distinctive about being a member of the order.
यह ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें विशिष्ट बनाता है एक संघ सदस्य होने के नाते.
To be an order member is to be committed to dharmic death and dharmic rebirth.
एक संघ सदस्य होने का अर्थ ही यही है कि हम धार्मिक मृत्यु और धार्मिक पुनर्जन्म के लिए कटिबद्ध होते हैं.
That's why we joined the order.
इसीलिए हम संघ में शामिल हुए.
We may not have realized it fully at the time, but that's why it was.
जब हम दीक्षित हुए तब शायद हमने यह जाना नहीं होगा, लेकिन यही इसका अर्थ है.
If we're not doing that, at best we're just social workers.
अगर हम वो नहीं करते तो हम केवल सामाजिक कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे.
Or if not social workers, just ordinary people.
और अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं तो फिर सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे.
But what makes us into dhammacharis, dhammacharinis is dhammic death and dhammic rebirth.
हमें क्या धर्मचारी और धर्मचारिणी बनाता है वह धार्मिक मृत्यु और पुनर्जन्म है.
And our daily sadhana is the focus of that experience.
और हमारी जो रोज की साधना है वह उसका केंद्र स्थान है.
But of course it needs to be worked out in all the other aspects of your life.
लेकिन यह आपके जीवन के अन्य आयामों में भी होने चाहिए.
It's no good being a spiritually dying, dharmically dying in your meditation when you're just an ordinary person outside your meditation.
तो इसका कुछ अर्थ नहीं है आप ध्यान में धार्मिक मृत्यु ले और ध्यान के बाहर आप सामान्य व्यक्ति करके जिए.
In your meditation, it's all anatta.
ध्यान में पूरी अनत्ता होती है.
Outside your meditation, it's all महाआत्मा.
और ध्यान के बाहर महाआत्मा होता है.
So we need to make sure that dharmic death and dharmic rebirth go right the way through our lives.
तो इस बात के लिए आप यानी खात्री रखिए, विश्वास रखिए कि पूरे जीवन में यह धार्मिक मृत्यु और धार्मिक पुनर्जन्म होना चाहिए.
And it's really vital to the life of our order that everybody is making a deep effort on these two lines.
तो यह दो बिंदुओं पर हमने जोर देना चाहिए. यह महत्वपूर्ण है हमारे सांघिक जीवन के लिए.
And I'm sure you will.
और मुझे लगता है आप यह करेंगे.
And I'm sure that the samvedana that you've experienced here, you will carry with you.
और मुझे आशा है कि यहाँ की संवेदना का जो आप अनुभव ले रहे हैं वो आप अपने साथ ले जाएंगे.
And I'm sure that you'll be able to make more of an effort than ever.
और मुझे आशा है पहले से न भूतो न भविष्यति आप अपने प्रयास करेंगे.
And that will definitely bring some results.
और निश्चित ही वो कुछ प्रयास यानी परिणाम फल वो लाएंगे.
But if the petrol gets low in the tank, we'll come back to the petrol station.
अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वापस हम यहाँ आएंगे.
And we'll, I hope, be able to arrange this retreat again next year. Uddhavatra, is that it? Definitely, he says.
तो अगले साल फिर से हम इस शिविर का आयोजन करेंगे.
And yeah, we can strengthen our samvedana even more.
और हमारी जो संवेदना है इसे अधिक हम वृद्धिंगत करेंगे.
And that will be very much for our benefit.
और यह काफी हमारे लिए लाभदायक होगा.
Be very much to the benefit of the whole order.
पूरे संघ के भविष्य के लिए यह शिविर महत्वपूर्ण है.
And of course, benefit to the world.
और दुनिया के लिए यह लाभदायक होगा.
What the world needs more than anything is Dhamma.
दुनिया को अगर किसी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह धम्म है.
It's the Dhamma that brings a moral society.
यह धम्म है जो नैतिक समाज लाता है.
This was Baba Saheb's great vision.
यह बाबा साहब की महान दृष्टि थी.
He knew that there was no other way.
वे जानते थे कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है.
Morality will only come when there's a deep basis in Dhamma.
नैतिकता तभी आएगी जब उसकी नींव गहरी धम्म में होगी.
Well, he even said, Dhamma is immorality, immorality is Dhamma.
बाबा साहब ने कहा नीति ही धम्म ही नीति है.
Because without Dhamma, morality is just conventional rules.
धम्म के बगैर जो नीतिमत्ता है वो केवल औपचारिक ही होती है.
So what we have to bring the world is Dhamma.
तो दुनिया में क्या हमें लाना है वो धम्म है.
And to bring it, we have to have it.
और धम्म को पुनर्स्थापित या दोबारा लाने के लिए हमें धम्म होना जरूरी है.
Not as something we bring from our pocket.
हमारे जेब से ऐसी कोई चीज हम नहीं लाते.
But something that we are.
ऐसी बात जो हम स्वयं ही होते हैं.
And we get that by our deep practice.
और हमारे गहरे आचरणों से या साधनों से हम यह करते हैं.
Our practice in meditation, our practice outside meditation.
हमारे ध्यान में हम यह लाते हैं, हम ध्यान के बाहर इसे लाते हैं.
And I'm sure that the samvejana that we've experienced here will really help us.
और जो संवेदना हमने यह अनुभव की है वह हमें मदद करेगी.
So that's it for now. No more talking.
मुझे लगता है यही पर्याप्त है आज के लिए.
And all it remains for us to do is remember that samvejana that Bhante felt when he was here.
तो इसे याद रखिए कि जो संवेदना भंते ने यहाँ महसूस की.
It is often talked about his experience at Bodh Gaya.
अक्सर वो अपने अनुभव बोधगया के बारे में बताते हैं.
At that time, of course, as I said before, the temple was still very much in the control of the Mahant.
वो अभी भी उन बातों की बात करते हैं जब यह महाविहार महंतों के हाथ में था.
And Bhante couldn't even make his own offering. The pujari took the offering from him and gave it to the Buddha.
तो वे अपना अर्पण भी नहीं कर पाए. वो जो पुजारी वहां था उसने भंते का अर्पण लिया और बुद्ध को दिया था.
And then expected some money for it.
और फिर कुछ पैसे उन्होंने मांगे थे.
But things are very much better than that now.
लेकिन अभी चीजें काफी अच्छी है, बदल गई है.
But despite all that, Bhante felt tremendous inspiration here.
लेकिन उसके बावजूद भी भंते को एक गहरी श्रद्धा यहाँ महसूस हुई.
And his poem comes very much from that inspiration.
और उस प्रेरणा से यह कविता आई है.
So let's hear it one more time.
एक बार फिर से इसे सुनते हैं.
Not in Nirvana's stillness, not in Samsara's flow, not in the heavens above us, not in the hells below, not in thought or word or action, not where mind and object meet, with wisdom and compassion, my place is at thy feet.
ना निर्वाण की स्थिरता में, ना संसार के प्रवाह में, ना ऊपर स्वर्ग में, ना ही नरक तल में, ना विचार शब्द एवं कृति में, ना मन और वस्तु स्पर्श में, पर प्रज्ञा और करुणा के साथ मेरी जगह आपके चरणों में.